நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வ்யாஸம் ததோ ஜயமுதீரயேத் கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய ஹரயே பரமாத்மனே பிரணதக்லேஷநாசாய கோவிந்தாய நமோ நம. அப் யுதிஷ்டிஜி மகாராஜ் சுக்தேவ்ஜி கா சரித்திர பூஜ்தே கேன் லகே பிதாமர் வியாஸ் நந்தன் ஜி சுக்தேவ் ஜி ஜெசா வைராகி கேசே ஹோ சக்தா ஹை உன்கே விஷய மே ஹம்னே தரஹ தரஹ கி கதாயே சுனி ஹை உன்கா பரமாத்மா கே அந்தர் திருட நிச்சய கேசே ஹோ கயா தா யே ஆப் ஹம்பக்கு கிருபா கர்கே சம்ஜாவ். பிதாமய பீஷ்ம கேனே லகே புத்ர யுதிஷ்டிர் சுக்தேவ் தோ துமாரே ஹி சமய கே பகவத் பிரிய ஹை. சுக்தேவ் ஜி கே விஷய மே ஹம்னே பி பஹுத் சி பாத்தே சுனி ஹை. सुखदेव जी कोई बहुत बड़े ऋषि के रूप में नहीं थे, साधारण पुरुषों के समान थे. व्यास जी ने उनको वेदाध्ययन करवाया और ये उपदेश दिया. देखो सुखदेव जी के विषय में जो ये यहां बोलते हैं पितामह भीष्म की, वो एक साधारण ऋषि के समान थे और ऋषि मुनि थे, वैसे थे. भागवत आदि में ऐसा नहीं आता. उस समय आप लोगों के मन में आएगी कि ये क्या बोलते हैं भाई. एक तरफ तो सुखदेव जी को साक्षात भगवान का अवतार बोलते हैं, एक तरफ कहते हैं ये तो साधारण थे, कोई खास नहीं थे. पितामह भीष्म बोलते हैं और कोई बोले तो सोचे कोई बात नहीं, भीष्म पितामह तो, और भगवान कृष्ण वहां मौजूद हैं. तो सुखदेव जी महाराज की जो ये कथा बोल रहे हैं ये कल्प कल्पांतरों की कथाएं हैं, एक कल्प में नहीं हुए सुखदेव जी महाराज. बहुत विचित्र कथा है ये, कई कल्पों की कथा है. इसलिए ऐसा मत समझना कि सुखदेव जी और जगह तो और ढंग से, यहां और ढंग से है. व्यास जी ने एक दिन सुखदेव से कहा कि बेटा तुम्हें धर्म का आचरण करना चाहिए, कड़ी से कड़ी सर्दी, कड़ी से कड़ी गर्मी, कड़ी से कड़ी भूख, कड़ी से कड़ी प्यास, ये सब सहन करना चाहिए. सुखदेव जी ने पूछा पिताजी सहन करने से क्या होता है कि वायुंच, सहन करने से प्राण वायु हमारी बढ़ती है, इससे आयु बढ़ती है और जीने का समय ज्यादा मिलता है तो ज्यादा साधन भजन करने का अवसर मिलता है. सत्य बोलो, सरलता रखो, क्रोध को तो आने ही मत दो. पुत्र सुखदेव, मनुष्य क्रोध करके दूसरे को वश में करना चाहता है पर वो खुद क्रोध के वश में होकर क्रोध की आग में बैठा हुआ क्या दूसरे को वश में करेगा. अपने हृदय को शीतल बनाओ, सत्य में निष्ठा रखो, दुखी प्राणियों पर दया करो, हृदय बहुत पवित्र होगा. अपने अंदर किसी प्रकार की वक्रता, टेढ़ापन, कुटिलता ये मत आने दो. घर में आए हुए अतिथि का विशेष रूप से आदर करो। अतिथि की प्राण रक्षा करने से अपने प्राणों में बल मिलता है। ये शरीर तो समुद्र के पानी के झाग के समान है, जो प्रकट होता है फूट जाता है। यहां कुटुंबी लोगों के बीच में हमारा सदा निवास नहीं है, अकस्मात छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे दीपक होता है, जगता जगता वायु के थोड़े से झोंके से बुझ जाता है, ऐसे ही अकस्मात मृत्यु हो जाएगी। तुम अपने शत्रुओं से सावधान रहो। सुखदेव तुम्हारे चारों ओर शत्रु हैं। तुम जरा से असावधान हो जाओगे तो शत्रु तुम पर आक्रमण कर देंगे। अभी तुम बालक हो, अभी से संभल सकते हो। तुम्हारे आयु के तो दिन गिने हुए हैं। जीविते लिख्य माने च, तुम्हारी आयु लिखी हुई है, उसमें से कम होता जा रहा है। नास्तिक आदमी वो होता है जो इस संसार को सच्चा मानता है और मांस और मेदिल शरीर को हृष्टपुष्ट ही रखना चाहता है, बाकी कोई पारलौकिक क्रिया नहीं करता, वो नास्तिक होता है। कुमार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सबसे पहले धर्म के साथ द्वेष करता है। सच्चा पुरुष वो है जो अपने साथ में धर्म की सहायता रखता है। आद्यकालिकया बुद्ध्या दूरेष्वेति निर्भयाः सर्वभक्ष्या न पश्यन्ति कर्म भूमि मचेतसः। जो केवल हाँ आज तो ये मिल गया और कल अपने को ये मिल जाएगा, बस ये आद्यकालिक बुद्धि है। ये जो आजकल पर ही विचार करता है, तात्कालिक विषयों पर ही विचार करता है। दूरे स्वयति निर्भरे, अरे देखा जाएगा, आएंगे तो आगे देखा जाएगा। ऐसे जो निर्भय होते हैं वे कर्म भूमि रूप मानव शरीर की महत्ता नहीं समझते। ये कर्म भूमि है मानव शरीर। काम क्रोध मृत्यु और पांचों इंद्रियों का विषय, इनसे ये संसार रूपी नदी भरी हुई है। इसमें धैर्य रूपी और धर्म रूपी नाव में बैठ करके तुम पार हो जाओगे तो हो जाओगे, तो शरीर में डूब जाओगे, नदी में डूब जाओगे। काम में, क्रोध में, मृत्यु के भय में और विषयों में डूब जाओगे। आदमी सोचता नहीं है कि मृत्यु उसके पीछे पीछे खड़ी है। जैसे राजा की आज्ञा से चोर को ढूंढने के लिए सिपाही जाते हैं, सिपाही उसका पीछा करते हैं, ऐसे ही मृत्यु हमारे पीछे लगी हुई है। चाहे हम सोएं, चाहे उठें, चाहे बैठें, चाहे चलें, मृत्यु का जाल तो हमारे पीछे लगा हुआ है। फिर भी तुम शांत कैसे बैठे हो बेटा? इतना तुम मृत्यु को क्यों भूले हो? बहुत जन्मों तक तुम संसार में भटकते भटकते अब मानव शरीर में आए हो। तुमको बहुत ऊंचा स्थान मिला है। अरे पुत्र, तुम ब्राह्मण शरीर में आकर यदि ब्राह्मणोचित कर्तव्य कर्म नहीं करोगे तो क्या यहां सुख भोगने के लिए आए हो क्या? ये अवस्था रूपी एक घोड़ा है। मनुष्य के आयु रूपी एक घोड़ा है, वो बहुत वेग से दौड़ता है और क्षण है, प्रहर है, रात है, दिन है, ये इसकी रोमावली है। जो दौड़ने के साथ हिलती रहती है, आज दिन आया आ जाए, आज जन्माष्टमी आ गई, राज वो हो गया, राज राधाष्टमी आ गई, राज वामन द्वादशी आ गई, आज ये हो गया और वो हो गया, ऐसे ये रात दिन दौड़ते दौड़ते उसके साथ हिलते रहते हैं। इसलिए अप्राप्त और निर्दोष आनंद के लिए प्रयत्न करना चाहिए। निर्दोष आनंद है ये, परमात्मा का आनंद निर्दोष आनंद। जो आदमी यो लुब्ध सुभृशम, जो आदमी लोभी होता है और अनृतश्च प्रिय है और झूठ बोलने वालों से प्रेम रखता है, झूठ बोलने से प्रेम रखता है, झूठ बोले हमारा काम निकल गया अच्छा है, और सतत निकृतिवन वंचना भी रतिस्यात, और नित्य निरंतर छल कपट की बातें करता है, ठगाई करता है और दूसरों को कष्ट देता है, वो अपने सामने बहुत बड़े दुखों का निर्माण करता है। इसलिए बेटा चुप क्यों बैठे हो? प्रयायताम, अब जल्दी से जल्दी आगे चलो, बहुत देरी हो गई। यमराज जी के दूत आकर तुमको फटकारे नहीं, उससे पहले सावधान हो जाओ, तुम्हारे प्राण जब हर लिए जाएंगे उस समय तुम्हारे लिए रोने वाला कोई नहीं होगा, तुमको रोना पड़ेगा। जिस समय यमराज जी की फौज आएगी, सेना आएगी, उस समय तुमको छुड़ाने वाला इस संसार में कोई नहीं होगा। तुमको जो अपना कुटुंब दिखता है, तुमको जो अपने साथी दिखते हैं, ये दिखते दिखते ही है, तुम्हारी असली आफत में कोई साथ देने वाला नहीं है। अब तो कुछ तुमने किया है पिछले जन्म में, या जो कुछ पिछले समय में जो कुछ किया सो किया, अब उसको तो भुला दो और निधत्स्व केवलम निधिम, और अब ज्ञान का भंडार भरो। शरीर में कोई बीमारी न लगे उससे पहले सावधान हो जाओ बेटा। प्राय लोग देखते हैं वृद्धावस्था में हम मोक्ष की बात सोचेंगे, ये अपने साथ खुद ही धोखाबाजी हो रही है। वृद्धावस्था आएगी उस समय शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां होंगी, स्वयं वृद्धावस्था भी एक भयंकर बीमारी है। इसलिए उस समय तुमसे मोक्ष का काम नहीं हो सकेगा, अभी तुम युवा हो, बच्चे हो, अभी तुम इस मोक्ष काम में लगो। यह एक ऐसा धन कमाओ, ज्ञान रूपी धन, जो न राजा से जिसको भय है, न कोई हमारी मृत्यु पर क्या होगा इसका भय है, ये धन तो हमारे साथ चलने वाला है। परत्र येन जीव्यते तदेव पुत्र दीयताम, धनम यदक्षरम ध्रुवम समर्दयस्व तत्स्वयम्। ये धन तुम स्वयं उपार्जित करो, परलोक में ये धन तुम्हारे काम आएगा। और बेटा इतना जल्दी तत्वज्ञान हो सकता है, कितना जल्दी? देखो क्या उदाहरण दिया है, न यावदेव पच्यते महाजनस्य यावकम अपक्व एव यावके पुरा प्रलीय से त्वर। घर में मेहमान आ गए और खिचड़ी खांड और घी डालकर उनको भोजन पुरुष दिया, खिचड़ी है और घी खांड, पहले घी डाला फिर खांड डाल दी। अब वो खिचड़ी कोई मिलावे खांड में, उसमें जितना समय लगे उतने समय में तुम्हारा मोक्ष हो सकता है, तुमको ज्ञान मिल सकता है। क्या उदाहरण दिया है, खिचड़ी में घी खांड मिलाया था और दूसरा दिया यावकम, जो का आटा हो और उसमें थोड़ा घी खांड मिला देवे, उतने समय में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। देखो ये तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो कर्म किए हुए हैं ना, इन कर्मों का बहुत बड़ा भाग तुम्हारे पीछे दौड़ता है। सभी प्रकार के कर्म तुम्हारे साथ हैं, अच्छे भी किए हैं बुरे भी किए हैं, परंतु जब इस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तब ये तुम्हारा कर्म पीछा करना पीछा लेना छोड़ देंगे। जल्दी करो, इस धन का कोई बंटवारा भी नहीं हो सकता, न भाई बंधुओं से रोक पाओगे। इसलिए बेटा तुम अपने आत्मा रूपी गुफा के अंदर जाकर बैठ जाओ, वहां तुम्हारे शत्रु भी नहीं आएंगे। मृत्यु कोई प्रतीक्षा करने वाली नहीं है, उस गुफा में बैठ जाओगे, आत्मा रूपी गुफा में बैठ जाओगे, वहां मौत नहीं आएगी। जो काम कल करना है वो आज कर लो। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत है पूर्वान्ने चा परान्निकम, दोपहर को काम करना वो सुबह कर लो, सायंकाल का काम दोपहर तक कर लो, क्योंकि मृत्यु का पता ही नहीं है। मृत्यु अगम्य है, उसको कोई आंख से नहीं देखते। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देती फिर भी वो होती हैं। तुम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ कि शरीर की मृत्यु होती है अपनी मृत्यु नहीं होती। देखो बेटा अपने कर्मों के अनुसार ये मनुष्य अपने को कटा हुआ बटा हुआ छटा हुआ अलग हुआ मानता है, वास्तव में ऐसी बात नहीं है। वो भगवान के साथ जुड़ता है तब उसे पता चलता है कि मेरा सहायक तो मेरे साथ सदा से है। धन की महत्ता तो दान देने में है बेटा, संग्रह करने में नहीं है। जो हमारे पास बल है वो काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं को मारने के लिए है, किन्हीं मनुष्यों को मारने के लिए नहीं है। जो कुछ हमने शास्त्रों से सुना है उस सुने हुए का धर्म के अनुसार आचरण करने में महत्व है, ज्ञान का अभिमान करने के लिए नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। किमात्मनायु न जितेंद्रियो वशी, और भाई जीने का भी क्या लाभ है यदि हमने अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया। ऐसी हितकारक बातें सुनी तो सुन करके सुखदेव जी महाराज परमात्मा की प्राप्ति में लग गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि महाराज यज्ञ दान तप और गुरु शुश्रूषा ऐसा कर्म करने से क्या फल मिलता है, तो कहते हैं कि यदि यज्ञ किया जाएगा दान किया जाएगा तपस्या की जाएगी और गुरु शुश्रूषा की जाएगी, चार है, दान और यज्ञ में धन का खर्च होता है, तो जब धन का खर्च होगा तो पाप बुद्धि से इकट्ठा किया हुआ धन निकल जाएगा तो अंतःकरण पवित्र होगा, तपस्या और सेवा से शरीर का मोह नष्ट होता है, तपस्या करेंगे शरीर का मोह नष्ट होगा और उससे भी बड़ा काम बड़ों जनों की सेवा गुरुजनों की सेवा परिवार के लोगों की सेवा करोगे तब ये शरीर का शुद्धिकरण हो जाएगा, शरीर में मैंपन और ममतापन नहीं रहेगी। ऐसे व्यक्ति को जो आनंद मिलता है उस आनंद को कोई कह नहीं सकता है। जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना अपने आप वृक्ष में लगते हैं, ऐसे ही कर्म के फल अपने आप ही हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। कभी सम्मान मिलेगा तो कभी अपमान मिलेगा, कभी लाभ होगा कभी नुकसान होगा, कभी उन्नति होगी कभी अवनति होगी, ये सब प्रारब्ध के अनुसार आएंगे। परंतु मनुष्य अपने इन आने जाने वालों से निवृत्त रह जाता है। दूसरे को उलाना मत दो। अलम मन्नीर उपालब्ध है, उपालंब देव मत। किसी को कठोर बात कहो मत, और दूसरे के अपराध की चर्चा दूसरों के सामने करो मत। यदि अपना हित चाहते हो तो इन बातों को छोड़ो। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज आप सुखदेव जी का चरित्र बता रहे थे, मैंने दूसरा प्रश्न यूं ही कर लिया, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने कौन सी तपस्या से प्राप्त किया था? सुखदेव जी की माता का नाम क्या है? देखो माता का नाम चेटिका है, चेटिका। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि माता का नाम क्या है, तो ये इस माता की बात नहीं बोलते हैं, सुखदेव जी का बहुत पुराना चरित्र पूछते हैं। और मैंने ये सुना है कि सुखदेव जी महाराज जनक जी के पास गए थे। ये सब सुखदेव जी का चरित्र मुझे विस्तार से सुनाओ। क्या बताएं महाराज, आपके मुख से ऐसी अमृतमय वाणी सुनते हुए नहीं में तृप्ति रसती है, शिन्वतो अमृतम उत्तमम। तृप्ति नहीं होती महाराज, ऐसा तो सुनते ही जाए सुनते ही जाए। पितामह भीष्म कहने लगे कि हम सुखदेव जी का बहुत आदर करते हैं बेटा, सुखदेव जी दिखने में छोटे हैं परंतु बड़ा कोई आयु से नहीं होता है, बाल सफेद हो गए इसलिए वो बड़ा है ये भी नहीं है, जिसके पास बहुत पैसा है साहब बड़े आदमी है, क्या पहचान की बहुत पैसा है, तो हम पैसे से भी बड़ा नहीं मानते। साहब ये बहुत बड़े आदमी है क्योंकि इनका बड़ा भारी कुटुंब है, वो भी हम नहीं मानते। ऋषयः चक्रिरे धर्मम योनु चान सनो महान। महात्माओं ने तो उसको बड़ा माना है कि जो वेदादि शास्त्रों का ठीक ज्ञान रखता हो। सुखदेव जी महाराज उन्हीं में से ही थे। सुखदेव जी का कैसे जन्म हुआ, इसके मूल में तपस्या है। तपस्या का फल कुछ और ही होता है बेटा। एक समय में व्यास जी महाराज सुमेरु पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे, परब्रह्म परमात्मा में मन लगा हुआ था। उन्होंने विचार किया कि पृथ्वी के समान धैर्यवान, अग्नि के समान ज्ञान में देदीप्यमान, आकाश के समान निर्लेप और जल के समान सरस और वायु के समान जीवन देने वाला मेरे बेटा होना चाहिए, ऐसी वो प्रार्थना कर रहे थे। सामने शंकर भगवान प्रकट हो गए। भगवान शंकर अकेले नहीं थे, बड़े बड़े लोकपाल उनके साथ, आदित्य सूर्य साध्य देवता गंधर्व सब उनके साथ थे। भगवान शंकर ने कहा, व्यास जी क्या बात है, क्या चाहते हो? व्यास जी ने कहा, महाराज अग्नि वायु भूमि जल और आकाश जैसा बेटा चाहता हूं। जरूर होगा, ऐसा तुम चाहते हो तो जरूर होगा। कि महाराज ये तो होगा, लेकिन साथ में मेरी और इच्छा है। और क्या इच्छा है? कि तद्भाव भावी, भगवत भाव से भावित होना चाहिए। मेरा बेटा हो वो भगवत भाव से जुड़ा हुआ हो, भगवान में उसकी बुद्धि हो, भगवान से घुला मिला होना चाहिए। जैसे मिश्री पानी के अंदर घुली मिली होती है, फिर उसके बाद उस मिश्री को पानी से अलग नहीं निकाल सकते, ऐसे उसका चित्त कभी भगवान को छोड़कर कहीं जावे ही नहीं। महादेव ने बड़ी उदारता से कहा, व्यास जी तुम तो बहुत अच्छा पुत्र चाहते हो, सृष्टि का हित होगा, खूब जो है। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। अब व्यास जी ने देखा कि क्या करूं, तो भाई यहां तो खूब लंबी चौड़ी बातें लिखी है, हम सार में बता देते हैं, क्योंकि कथा कुछ ऐसी भी होनी चाहिए जो छिपानी भी चाहिए। छिपानी इसलिए चाहिए कि लोगों पर बुरा प्रभाव न पड़े। समय के अनुसार पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को ये बात कह दी, वो अधिकारी पुरुष थे, लेकिन आजकल का गिरता हुआ समय आ गया, लोग क्या करते हैं ऐसी चीजों में दोष देखते हैं। कितने बड़े तपस्वी वीर ऐसे थे, फिर उनका मन ऐसे कैसे हो गया, इससे लोगों पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए पूरी कथा नहीं कहनी चाहिए। सारांश बता देते हैं कि वे अरणि मंथन करने लगे। अरणि मंथन एक अग्नि यूं एक लकड़ी नीचे एक लकड़ी ऊपर, उसका यूं मंथन करने लगे। मंथन करते से तो उसमें से अग्नि स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। वो सुखदेव जी महाराज जल के समान सरस थे, वे सुखदेव जी महाराज आकाश के समान निर्लेप थे। अब जो ही सुखदेव जी प्रकट हुए तो वहां उनके सामने अंतरिक्ष से ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आकर दंड कमंडल दिया, गंधर्व लोग बड़े खुश हो गए, जिसके मन में जो आया वो उपहार दिया उनको। वायु ने पुष्पों की वर्षा की, शंकर भगवान और पार्वती जी आए, उन्होंने उनका उपनयन संस्कार किया, जनेऊ संस्कार। ऐसी ऐसी उनकी बहुत सी बातें हुई। देखो यहां तो ये लिखा है, भागवत आदि में लिखा उनके उपनयन संस्कार हुआ ही नहीं, तो यहां बात पहले ही बता देते हैं। सुखदेव जी का चरित्र आप और जगह सुनोगे और यहां सुनोगे, बड़ा भारी अंतर है। ये किसी और कल्प की कथा है, ये किसी और कल्प की कथा है, ऐसा समझना चाहिए। पितामह भीष्म ने कहा कि फिर सुखदेव जी महाराज ने अपने पिताजी से पूछा कि अब पिताजी आपने मुझे प्रकट किया है, आपने मुझे जन्म दिया है, मैं क्या करूं कि बेटा वेदाध्ययन करो, कि कहा करूं कि मेरे पास ही करो। तब व्यास जी ने उनको खूब अच्छा वेदाध्ययन करवा दिया। वेदाध्ययन करके वे बड़े निष्णात हो गए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज पिताजी ये मोक्ष कैसे मिलता है, मोक्ष जिसका हो जाता है उसकी क्या पहचान है, आप मुझे मोक्ष का रास्ता बताइए। तो व्यास जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा मोक्ष का रास्ता तो तुमको जनक जी बताएंगे, जनक जी के पास जाओ। पर बेटा देखो एक बात का ध्यान रखना, जिसके पास भी जाओ विद्या अध्ययन करो, उससे कुछ यदि आपको सीखना है तो नम्र भाव से सीखना, वह अभिमान मत करना। सरल भाव से सीखना, सरलता से गुरु का या जिसके पास विद्या है उसका हमारे अंदर आधान होने का तरीका आता है। तुम किसी से सीखना भी चाहो और अभिमान भी रखना चाहो, दो बात नहीं होगी। ये जनक मेरा शिष्य है, तुम सोचोगे कि ये जनक तो मेरे यजमान है, मेरे शिष्य है, मेरे बाप के शिष्य तो मेरे भी शिष्य है। ऐसा अभिमान मत करना। अहंकारो न कर्तव्यो याज्ञे तस्मिन् नराधिपे स्थातव्यम, तुम उनके पास ठहरना, जो कुछ कठिनाई आए उसको भी तुम सहन करना। तब वे वहां से पार हुए। अब देखो रास्ता बताते हो, कितने देश देशांतरों को पार किया उन्होंने। यहां नाम आता है सदेशान विविधान पश्यन चीन हूण निषेवितान, जहां चीन जाति के लोग और हूण जाति के लोग रहते थे, उन देशों को पार करते करते सुखदेव जी महाराज आर्यावर्त में आए, चीन वगैरह को पार करते हुए। तो यहां चीन देश नहीं है, यहां चीन जाति है, वो पार करते करते आए। बड़े सुंदर सुंदर नगर आए बीच में, सुखदेव जी महाराज जा रहे मस्ती, कहीं ठहरे नहीं, कहीं रुके नहीं, कहीं बड़े बड़े सोने चांदी रत्नों की दुकानें आई वो भी नहीं देखी। सुखदेव जी महाराज जा रहे थे तो पर्वतों के अंदर रत्नों की खाने देखी हूं जा रहे, सोने की खाने रत्नों की खाने कुछ किधर भी मन नहीं दिया। और विदेह नगरी में आ गए। अब विदेह नगरी में आए तो वहां खूब गायों का समुदाय, खूब गाय थे, सांड थे, उनकी आवाजें आ रही थी, दड़ुकने की आवाज आ रही थी, कहीं हाथी घोड़े की चिंगार की आवाज आ रही थी, और लोगों की बड़ी प्रसन्नता से आमोद प्रमोद की आवाजें निकल रही थी। सुदेव जी महाराज चुप था। राजा के दरवाजे पर पहुंचे तो द्वारपाल आए, तो द्वारपालों ने बड़ा कठोरता से अपना, कौन हो तुम, किधर जाते हो, निकलो यहां से, किसको पूछ के आए? ऐसे सुखदेव जी महाराज को डांट डांट करके कहने लगे। सुखदेव जी महाराज उस समय चुपचाप और शांत रहे, चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट के अंदर कोई अंतर नहीं आया। खूब धूप पड़ रही थी तो चेहरे पर कोई कालिमा नहीं आई। बहुत प्यासे थे, भूखे थे, परंतु भूख प्यास को उन्होंने अभिव्यक्त नहीं किया, सब कष्ट सहे और डांट डपट करने लगे द्वारपाल, तो चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ा। उन द्वारपालों में एक द्वारपाल को बड़ी तकलीफ हुई। तेषां तु द्वारपालानां एकः शोक समन्वितः, एक द्वारपाल आया, सुखदेव जी महाराज की आनंदमय छवि देखी, छवि देख करके उनके चरणों में प्रणाम किया, रोने लगा, महाराज हमारी गलती हो गई, आप कोई शाप मत दे देना, क्रोध मत करना, हम लोग द्वारपाल हैं, ऐसा व्यवहार करना नहीं जानते हैं हम कि किन के साथ क्या व्यवहार हो। सुखदेव जी महाराज तो मध्यान्ह काल में जैसे सूर्य चमकता है ऐसे अपने ज्ञान में चमक रहे थे, मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले, वैसे के वैसे थे, बड़े आदर के साथ, चलिए महाराज ये सेवक आपके आगे आगे चलता है, आप इधर चलिए इधर चलिए, ऐसे करते करते दूसरे ड्योढ़ी पर पहुंचा दिया। वहां गए तो वहां मंत्री जी मिले, मंत्री जी ने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया, चलिए महाराज आप आगे चलिए। देखो युधिष्ठिर, उनके मन में जरा सा भी विचार नहीं आया कि एक द्वारपाल मुझे बुरी तरह से डांटता है और एक तरफ यहां का खास प्रधानमंत्री वो मेरे सामने आकर नम्रता पूर्वक मुझे आदर देते हुए आगे ले जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर तीसरी कक्षा में आगे गया, आगे जाते ही उनके सामने 50 युवतियां थी, ऐसा सुंदर रूप वाली थी, जिनके कान सुंदर, होठ सुंदर और उनके सूक्ष्म रक्तांबर धरा, उनके इतने पतले पतले कपड़े थे कि जिनसे अंग प्रत्यंग संग सब स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और गले के अंदर खूब अच्छे आभूषण थे। बड़े प्रेम से बोलती थी आगे आकर के, और ऐसे लटके से, झटके से, आंखों के मटकने से ऐसे ऐसे बोले सुखदेव जी महाराज, एकदम तटस्थ थे। सुखदेव जी महाराज के चरण धोए और कहा आप विराजिए। सुखदेव जी महाराज विराजमान हो गए और ऐसे ऐसे स्वादु स्वादु उनके सामने भोजन रखा। सुखदेव जी महाराज ने बड़े आनंद से तृप्त होकर भोजन किया, चारों तरफ से उनको घेर ली और खूब उनको प्रमदावन की सैर कराई उस बगीचे की। क्या मधुर पक्षी आवाज कर रहे थे, और वो स्वयं भी स्त्रियां कोई अप्सराओं से कम नहीं। क्रीडन्त्यश्च हसन्त्यश्च गायन्त्यश्च पिता शुभम, कोई गाती है, कोई खेलती है, कोई मनोविनोद करती है, सब उनको अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए। परंतु आरणेयस्तु शुद्धात्मा, अरणि मंथन से उत्पन्न हुए हमारे सुखदेव जी महाराज अपने आप में मस्त थे, उनका मन तो अपने आप में डूबा हुआ था, अतः वे खूब चिल्ला चिल्ला करके रह गईं। और फिर उन्होंने कहा कि अब आप आगे पधारिए। उस बड़े सम्मान के साथ, शिष्टता के साथ फिर वे आगे राजभवन के अंदर प्रवेश किए। राजभवन में प्रवेश किए तो आगे आगे पुरोहित मिले। पुरोहित के हाथ में एक बड़ा सुंदर रत्न जटित आसन था, स्वस्तिक का चिन्ह बनाया हुआ आसन, सर्वतो भद्र का, स्वस्तिक नहीं स्वर, सर्वतो भद्र आसन यूं लपेटा हुआ। और साथ साथ में थे महाराज जनक जी। जनक जी महाराज सामने आते कहने, मेरे गुरुपुत्र सुखदेव को मैं मिथिला नरेश जनक उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। कोई सुखदेव जी पर असर नहीं पड़ा, इतना बड़ा भूमंडल का राजा हमको प्रणाम करता है, वो हमारा शिष्य है, कोई भावना नहीं आई। उन्होंने एक ऊंचे आसन पर बैठा दिया और राजा ने पूछा, किम आगमनम, आपका यहां पर कैसे पधारना हुआ महाराज, क्या आज्ञा है आपकी। सुखदेव जी महाराज बहुत प्रेम से बोलने लगे, हे महाराज, मुझे मेरे पिताजी ने कहा है, व्यास जी महाराज ने, कि तुमको यदि मोक्ष का ज्ञान करना हो, जो व्यक्ति जहां है उस स्थिति में तुमको यदि मोक्ष का ज्ञान करना हो तो मेरा यजमान, मेरा शिष्य विदेहराज जनक है, उसके पास जाओ और वो तुमको खूब अच्छी शिक्षा देगा। कर्म की प्रवृत्ति और कर्म की निवृत्ति का क्या रहस्य है इसको वो ही बता सकता है, उसके पास जाओ। पिताजी के आदेश से आपके पास आया हूं, आप बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है, कैसे कल्याण होता है, मोक्ष का स्वरूप क्या है। जनक जी महाराज देखते रहे, एक टक होकर के जनक जी महाराज सुखदेव जी को देखते रहे। सुखदेव जी महाराज प्रश्न करके वैसे शांत भाव से, सुखदेव, जनक जी पर असर पड़ा कि मेरे यहां तक पहुंचने में, मेरे ही महल में इन्होंने कितना मान अपमान और स्त्रियों का घेराव सब कुछ देखा है, लेकिन कोई उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, केवल यही कहा कि पिता की आज्ञा से मुझे मोक्ष की बात बताओ। आते ये कहना चाहिए कि जनक जी महाराज, इतने बड़े आप राजा हो, आपके यहां लोग इतना अशिष्ट व्यवहार करते हैं, आप हमारे यजमान हो, हमारे शिष्य हो, और ऐसा बर्ताव आपके यहां हमारे साथ होता है। कुछ नहीं बोले, मोक्ष की बात। जनक जी महाराज की आंखें भरी आई और जनक जी ने उनको कहा कि देखो महाराज, आप कैसे विचित्र ज्ञानी हैं। ज्ञान आपको हो गया लेकिन आपको पता ही नहीं है, मोक्ष आपका हो गया लेकिन आपको पता ही नहीं है। यदि ज्ञान प्राप्त करना हो तो पहले गुरु के पास जाओ। ज्ञान प्राप्ति के बाद जैसे आदमी नौका पार करता है तो नाविक और नौका को दोनों को छोड़ देता है, ऐसे ही गुरु और ज्ञान दोनों को छोड़ करके आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। आपके लिए कोई नए ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। चार आश्रमों की मर्यादाएं आपके ऊपर लागू ही नहीं होती हैं। एक ब्रह्मचर्य अवस्था के अंदर ही पूर्ण ज्ञान हो गया, क्यों दूसरी जगह जाएगा। ये शरीर तो एक पक्षी के घोंसले के समान है, जीवात्मा पक्षी के समान, ये तो घोंसला है, इसके अंदर पक्षी निवास करता है। ये आत्मा स्वयं प्रकाशमान है। जो व्यक्ति किसी से डरता नहीं है वो व्यक्ति किसी को डराता भी नहीं है। जो व्यक्ति किसी को डराता है इसका मतलब वो स्वयं डरा हुआ है। सब प्राणियों में समभाव रखा जाए। आप इस स्थिति को प्राप्त हुए वे हो प्रभु, आपको ज्ञान नहीं है क्योंकि आपके अंदर अहंकार नहीं है। मैं ज्ञानी हूं ऐसा आप में अहंकार नहीं है। सूर्य कभी नहीं कहता कि मैं प्रकाशक हूं, भगवान कभी नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, हर कहीं नहीं कहते भगवान भी। आप ही के गुरुदेव से, आप ही की पिता से, आपके पिताजी से ही मुझे ज्ञान मिला है, वही ज्ञान मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। मेरे पास नया ज्ञान थोड़ा ही है। सुखदेव जी महाराज को बड़े सम्मान के साथ वहां से विदा किया, वे उत्तर दिशा के लिए चल पड़े। वहां से आते आते वो अपने पिताजी के पास आ गए। पिताजी ने पूछा, क्यों बेटा जनक जी से ज्ञान मिला? कि महाराज जनक जी ने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया और कोई बात नहीं की उन्होंने। व्यास जी बैठ करके सब ध्यान लगाया कि इनके साथ क्या क्या हुआ। व्यास जी महाराज भी पुत्र को कुछ बोले नहीं और नेत्रों से प्रेम के कारण से उनके आंसू ढलकने लग गए। व्यास जी के पास सुखदेव जी सहित पांच शिष्य थे। एक बार सब शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। बोलिए बेटा, क्या पूछना चाहते हो? कि एक तो ये सुखदेव जी आपके पुत्र हैं, आपके शिष्य, और चार हम हैं, हम पांच हैं। आपने जो हमको ब्रह्म ज्ञान दिया है ये ब्रह्म ज्ञान अब आप और किसी को मत देना, अब ब्रह्म ज्ञान हम ही दें, हम ही चेला बनाएं, आप नया चेला मत बनाना। व्यास जी ने कहा कि देखो बेटा, ये न्याय की बात नहीं है। ज्ञान एक ऐसी वस्तु होती है जिस पर किसी का अपना एकाधिपत्य नहीं होता। तुम दूसरों को ज्ञान देने के लिए मुझे बाध्य नहीं कर सकते, और तुम ये सोचते हो कि हम गुरु बने और लोगों को हम ज्ञान दें। आपको मालूम है कि गुरु कौन बनता है? गुरु वो बन सकता है जो उत्तम शिष्य होता है, और उत्तमात ही उत्तम शिष्य होता है, वो शिष्य ही रहता है, ज्ञान देने पर भी शिष्य ही रहता है। गुरुदेव, ज्ञान देने के बाद ज्ञान देने वाला शिष्य कैसे रहता है? देखो, पहले तो वो गुरु के अधीन रहता है, फिर जिस ज्ञान को वो दूसरों को देता है उस ज्ञान का वो शिष्य होता है। इसलिए गुरु कोई होता ही नहीं, शिष्य ही होता है। तुम मुझे बोलते हो कि किसी और को ये ज्ञान मत देना, ये बात ठीक नहीं है। इतने में ही वहां नारद जी आ गए, और शिष्य तो सब चले गए, नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि व्यास जी महाराज कुछ उदास उदास मालूम देते हो। तो कहा हाँ उदास है, क्यों? हमारे पास चार शिष्य पढ़ते थे वो चले गए, एक ये हमारा पुत्र शिष्य वेद ये सुखदेव है, समाधि में रहता है, कुछ कहो तो पता नहीं, न तो सुनता है न बोलता है, जो ज्ञान का सार है उसमें डूबा रहता है। अब मेरे पास मेरा ज्ञान है, मैं क्या करूं? नहीं, ज्ञान की आवृत्ति करते रहना चाहिए। आमनाय मला वेदा ब्राह्मणस्या व्रतम मलम, वेद पढ़कर उसका अभ्यास नहीं करना ये वेदाध्ययन का दूषण होता है। कि क्या करूं? आप अपने पुत्र को ही पढ़ाओ कि ये तो पढ़ा हुआ है, वेद का सार वेद का तत्व तो जानता है, भले ही जानो आप इसको सिखाओ। तब बड़े जोर जोर से वेद के मंत्र बोल बोल करके कहा बेटा सुखदेव, हाँ महाराज, लो आओ बैठो। वो वहां पर कुछ बोलने लगे, इतने में जोर से आंधी आई, जोर से आई। तो कहा नहीं बेटा अब पढ़ाई नहीं होगी। क्यों पिताजी? ज्ञान का और इस आंधी का क्या संबंध है? कि जब अपन बैठे जिस दिशा में उल्टी आंधी आती है तब अनध्याय करना चाहिए। प्रवह नाम की वायु है, इस वायु में अध्ययन नहीं होता है। नारद जी महाराज भी वहीं थे, नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी की बात सही है, जब कोई गुरु शिष्य बैठे हो तो कोई बीच में से उठ करके चला जाए अध्याय समाप्त कर देना चाहिए, हाथी निकल जाए तो अध्याय समाप्त कर देना चाहिए, कोई ऊंट निकल जाए तो अध्याय समाप्त कर देना चाहिए, कोई बीच में से पशु भी निकले मनुष्य भी चला जाए अध्याय समाप्त, ये अध्ययन का वध हो जाता है, इसलिए उठ करके नहीं जाना चाहिए। और ये वायु उल्टी आ रही है इसलिए अध्याय ये अनध्याय रखना चाहिए। कभी कभी अनध्याय के नियमों का पालन करने पर अध्याय करने का जो फल है वो उसको मिल जाता है, इत्यादि इत्यादि बातें हुई। और जब वो जो है वायु चली गई, उसके बाद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा कि बेटा अब तुम मंत्रों का उच्चारण करो। तब वे वेदों मंत्रों का उच्चारण करने लगे और नारद जी महाराज आए तो नारद जी का बड़ा पूजन किया, और पूजन करने के बाद अब आगे नारद जी महाराज का और सुखदेव जी महाराज का आगे नया संवाद चालू होगा।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।